हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आज का डिनर शिवांशा ने बनाया था, और जिस तरह से शिवांशा की पहली रसोई में बनी खीर को खाकर वेद की जान पर बनाई थी, उसके बाद से उन सबके अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। पहले हाउस हेल्पर ने शिवांशा को किचन में नहीं जाने दिया, तो अब शिवांशा का बनाया हुआ खाना खाने से वंश कतरा रहा था। वंश के बर्ताव ने शिवांशा को काफी हर्ट किया था। खाने के बाद जब वेद और शिवांशा ऊपर कमरे में पहुंचे, तब शिवांशा का मूड काफी उखड़ा हुआ था। वो वेद की तरफ देख तक नहीं रही थी, लेकिन कुछ ही देर में वेद ने उसे संभाल लिया था। शिवांशा का मूड तो वेद ने अच्छा कर दिया था, लेकिन तभी उसके पास अरमान का मैसेज आया। परसों रोहन के केस की फर्स्ट हियरिंग थी, वे किसी भी हाल में उसे टाल नहीं सकते थे। रोहन इन सब के लिए तैयार नहीं था, ऐसे में अरमान चाहता था कि शिवांशा और वेद मिलकर उसे संभाले। वेद ने गहरी सांस ली और जल्दी जल्दी अरमान को मैसेज टाइप करने लगा। मैं उसका देख लूंगा, लेकिन गलती से भी नवी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसकी वजह से तुम्हें रोहन के साथ डील करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं नवी से बात करूंगा, वो वापस उदयपुर आ जाएगी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बस आप शिवांशा को देख लीजिए, अरमान ने जवाब दिया। वेद ने आके उसे कोई मैसेज नहीं किया था। उसने शिवांशा की तरफ देखा, जो लगभग सोने ही जा रही थी। वेद के पास ज्यादा टाइम नहीं था, परसों ही केस हियरिंग थी। उसे शिवांशा को सब कुछ बताना था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वो इसकी शुरुआत कहां से करे। पिछली बार भी रोहन का पता चलने पर शिवांशा बहुत रोई थी, और रोहन का तो छोड़ो, वो तो खुद तक को नहीं संभाल पा रही थी। शिवांशा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रही थी। वेद ने ही रोहन और शिवांशा दोनों को संभाला था। शिवांशा काउच पर लेटने जा रही थी कि तभी उसकी नजर वेद पर पड़ी, जो खोई हुई निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे के भाव भी काफी गंभीर थे। क्या हुआ? शिवांशा ने वेद के पास आकर परेशान चेहरे के साथ पूछा। तुम्हें नींद आ रही है क्या? वेद ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय खुद ही दूसरा सवाल पूछ लिया था। शिवांशा ने नामे सिर हिलाकर कहा, नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि आप मुझे सोने का बोलें, इससे पहले मैं खुद ही सोने चली जाती हूं। आपको मुझसे कोई काम है क्या? क्यों ना हम लॉन्ग ड्राइव पर चलें? बाहर मौसम काफी अच्छा है, हल्की ठंड है, पर हम बाहर नहीं निकलेंगे और गाड़ी का टेम्परेचर एडजस्ट रहता है, वेद ने हिचकिचाते हुए पूछा। आज से पहले उसने कभी किसी लड़की को इस तरह लॉन्ग ड्राइव या साथ चलने का नहीं कहा था। वेद के पूछने पर शिवांशा सोच में डूब गई थी। वेद के चेहरे के भाव से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो रोमांटिक होकर ये सब पूछ रहा है, उल्टा वो तो टेंशन में लग रहा था। शिवांशा ने कोई जवाब नहीं दिया तो वेद बोला, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा, तुम अपसेट हो ना? मैं अब ठीक हूं, और मुझसे ज्यादा अपसेट आप नजर आ रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बाहर ले जाकर मुझे? बोलते हुए शिवांशा एक पल के लिए रुक गई थी। वेद ने उसकी तरफ घूर कर देखा और कहा, सीरियसली, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं इस रिश्ते को चांस देना चाहता हूँ, चांस दे रहा हूँ, बिकॉज आई लाइक यू, और तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें बाहर ले जाकर मार दूंगा? शिवांशा ने जल्दी से हड़बड़ाकर नामे से हिलाया। वो बोली, नहीं, मैं वो नहीं सोच रही थी, मतलब। शिवांशा को समझ तक नहीं आ रहा था कि वो अपनी सफाई में क्या बोले। सच तो ये था कि उसे वेद पर पूरा यकीन था, और जो शब्द निकले थे वे अनजाने में निकले थे। मतलब मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, तुम वही सोच रही थी। क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर यकीन नहीं है शिवांशा? वेद ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में पूछा। मुझे आप पर यकीन है, लेकिन आप पिछले 5-7 मिनट से कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हो, बस तभी मुझे आपकी टेंशन हो रही है। मैं ये कहना चाहती थी कि कहीं आप बाहर जाकर मुझे एक नया झटका ना दे दो। ऐसा लग रहा है बात कुछ सीरियस है, और आप पहले इधर उधर घुमाएंगे, मेरा मूड अच्छा करेंगे और बाद में बताएंगे, इससे अच्छा है पहले ही बता दीजिए। मुश्किल से और अटकते शब्दों के साथ ही सही, लेकिन शिवांशा के दिल में जो भी चल रहा था उसने वो वेद के सामने रख दिया था। शिवांशा को बिल्कुल ठीक लग रहा था, वेद उसे रोहन के बारे में बताने वाला था। वेद ने तुरंत गहरी सांस लेकर खुद को सामान्य किया और शिवांशा का हाथ पकड़कर बोला, हाँ, तो मेरा बर्ताव अजीब लग रहा है क्योंकि मुझे इस बंद कमरे में घुटन हो रही है। तुम मेरे साथ चलो, हम लॉन्ग ड्राइव पर चल रहे हैं। ठीक है, फिर चेंज तो करने दीजिए, शिवांशा ने जवाब में कहा, लेकिन वेद ने उसकी एक नहीं सुनी और उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाने लगा। आज से पहले उसने खुलकर कभी इस तरह शिवांशा पर अपना हक नहीं जताया था। वेद ने भी सोच लिया था कि अगर वो शिवांशा और अपने रिश्ते को चांस दे रहा है तो वो अपना 100% उसे देगा और हर तरीके से उसकी केयर करेगा। अगले कुछ मिनट में शिवांशा वेद के साथ गाड़ी के अंदर थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसने वेद की तरफ देखा और धीरे से पूछा, तो क्या मैं इसे अपनी ऑफिशियल पहली डेट मान सकती हूँ? उसकी बात सुनकर वेद हल्का सा चौंक गया था, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ मान सकती हो। तुम मनन से शादी करने वाली थी ना, और तुमने कहा था कि तुम्हें लाइफ और शादी को लेकर कुछ खास एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है। तुम्हारी हरकतें और बातें देखकर ऐसा लगता नहीं है, मनन तुम्हारी कोई भी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाता। वेद के दिमाग से आज भी शिवांशा की कही कुछ बातें निकली नहीं थी।
पिछली बार अस्पताल में जब वेद ने शिवांशा से मनन से शादी करने का कारण पूछा था, तब शिवांशा ने यही कहा था कि उसे अपने लाइफ पार्टनर में यही चाहिए कि वो बस उसका ध्यान रखे। उसके अलावा उसकी कोई खास उम्मीदें नहीं थी। हाँ, पहले नहीं थी, लेकिन आपके साथ रहते हुए मैं बदलने लगी हूँ, जैसा आपने कहा था ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ने लगी हैं, शिवांशा ने जवाब दिया। वे दोनों ऐसे ही बातें करते हुए काफी आगे आ गए थे। वेद शिवांशा को एक स्ट्रीट साइड बने एक ढाबे में लेकर गया। वे दोनों बाहर खुली हवा में एक चारपाई के ऊपर बैठे हुए थे। बताओ तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करूं, वहां बैठते ही वेद ने पूछा। कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आप अपने लिए कुछ ऑर्डर नहीं करोगे और मेरा भी कुछ खाने पीने का मन नहीं है, शिवांशा ने जवाब दिया। काफी रात हो जाने की वजह से आसपास ज्यादा लोग नहीं थे और वैसे भी वेद और शिवांशा उनसे थोड़ा दूर बैठे हुए थे। काफी देर तक उन दोनों के बीच शांति छाई रही। शिवांशा ने आसमान की तरफ देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, जो बात बताने के लिए आप मुझे इतनी दूर लेकर आए हो वो अब बता सकते हो। वेद हल्का सा चौंक गया था। उसने शिवांशा से कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं कुछ बताने वाला हूँ? मुझे पहले ही पता था और मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप मुझे अभी सब बता दीजिए। इस तरह इतनी रात को पूरा दिन काम करने के बाद इतनी ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं थी, शिवांशा वेद की तरफ देखकर बोली। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड करना था तो क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन होगा? हाँ, ये सच है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना था, पर यह भी झूठ नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर आना चाहता था, वेद ने जवाब दिया। उसके लहजे में किसी भी तरह का बनावटीपन नहीं था। शिवांशा ने बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला दिया था। वो एकटक वेद के चेहरे को देख रही थी। वेद ने भौंहें उठाई और गंभीर आवाज में कहा, परसों रोहन के केस की हियरिंग है और मैं और इसे टाल नहीं सकता हूँ। हालांकि जहां वो मिला था वहां अंकुश राजावत मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी रोहन अंकुश की ही एक फैक्ट्री के अंदर था। मैंने इन सब का इल्जाम उसी पर लगाया है।
अंकुश का नाम सुनकर शिवांशा मानो अपनी जगह पर जम सी गई थी। वेद के साथ रहते हुए इतने दिनों में उसने अंकुश और उन बुरी यादों को मानो पूरी तरह भुला दिया था। उसके चेहरे पर डर के भाव देखकर वेद ने जल्दी से उसे अपने सीने से लगा लिया था। वो उसे सहलाते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है शिवांशा, मेरे होते हुए वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। मैं जानती हूँ, पर फिर भी उसके सामने जाने से डर लगता है, रोहन इन सबको फिर से नहीं झेल पाएगा। आप ये केस बंद करवा दीजिए ना, वैसे भी वो जेल में है, शिवांशा ने घबराई आवाज में कहा। डर के मारे वो वेद में सिमटने लगी थी। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि रोहन के साथ जो भी हुआ था उसका उसे इंसाफ मिले। मैं पूरे मामले को अच्छे से हैंडल कर लूँगा, बस मैं चाहता हूँ कि तुम रोहन को इमोशनल सपोर्ट दो, वेद बोला। उसकी बात सुनकर शिवांशा जल्दी से अलग हो गई थी। उसने ना में सिर हिला दिया था। शिवांशा ने कहा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, आप जानते हैं मैं खुद इमोशनली इतनी वीक हूँ। सच कहूँ तो आपके सामने मैं कुछ भी बोल देती हूँ, क्योंकि आपने मुझे वो कम्फर्ट फील करवाया है। उसके अलावा आपके घर वालों तक के सामने मेरा मुँह नहीं खुलता है। ऊपर से मुझे यही लगता है कि रोहन के साथ जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे उससे नजरें मिलाने में भी शर्म महसूस होती है। तुम्हें खुद को गिल्ट फील करवाने की ज़रूरत नहीं है। अंकुश एक घटिया इंसान है, न जाने उसने कितनी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की होगी। तुम्हें खुद को तैयार करना होगा शिवांशा, कल अरमान रोहन को लेकर यहाँ आने वाला है। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम भी हिम्मत बनाकर रखोगी, वेद बोला और उसने अपना हाथ शिवांशा के आगे बढ़ा दिया था। शिवांशा अभी भी डर रही थी। वो कोई भी प्रॉमिस नहीं करना चाहती थी जो वो निभा नहीं सकती थी। वेद ने सिर हिलाया और शिवांशा का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती अपने हाथ पर रख दिया था। मुझे पूरा यकीन है, हम दोनों साथ रहेंगे तो तुम कर लोगी, वेद ने काफ़ी कॉन्फिडेंट आवाज़ में कहा। शिवांशा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। उसकी आंखों के सामने अभी भी रोहन का डरा सहमा सा चेहरा आ रहा था, जब उसने उसे हॉस्पिटल रूम में देखा था। वो किसी को अपने पास तक नहीं आने दे रहा था। जाहिर सी बात थी कि रोहन के साथ जो भी हुआ था उसे उस बारे में कोर्ट के सामने खुलकर बताना था। अपने साथ हुए गलत को किसी के सामने खुलकर रखना कितना मुश्किल था, ये शिवांशा से बेहतर कौन समझ सकता था। वेद के बार बार पूछने पर भी वो अंकुश की ज्यादतियों के बारे में उसे नहीं बता पाई थी। शिवांशा बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। उसने अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसके मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई थी और वो रोने लगी थी। उसे रोता हुआ देखकर वेद ने अपनी मुट्ठियां बांध ली थी। वो अच्छे से जानता था कि शिवांशा रोहन के लिए बुरा महसूस करते हुए रो रही थी। वेद ने मन ही मन कहा, जब तुम रोहन का सोचकर इतना दुखी हो रही हो तो तुम्हें अपनी सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा? आई विश कि तुम्हें कभी इस बारे में याद ना आए शिवांशा। आई प्रॉमिस कि मेरे रहते कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगा, खुद मेरे घर वाले भी नहीं, और ये वेद सिंह चौहान का तुमसे वादा है। वेद के चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। उसने शिवांशा का हाथ पकड़कर उसे उठाया और गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। शिवांशा बिल्कुल किसी रोबोट की तरह बिना किसी भाव के रोते हुए चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ अंकुश की हियरिंग के बारे में तेजिंदर राजावत को भी पता था। वो इस बारे में अपने कमरे में बैठकर लीला से बात कर रहे थे। उस छोटे लड़के के केस के चलते ही सही, लेकिन हमारे अंकुश को फाइनली कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा। मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगा लीला। मैं वादा करता हूं कि अगर अंकुश को बेल नहीं मिली तो वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं रहेगा। जिस दिन मेरा बेटा बाहर आया उस दिन से वेद सिंह चौहान और उसकी उस नकली पत्नी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, तेजिंदर ने दांत पीसते हुए कहा।
वेद की वजह से वो बहुत लाचार हो गया था। उसने ना सिर्फ अंकुश को जेल में डलवा दिया था बल्कि बिजनेस में भी उन्हें पूरी चुनौती दे रहा था। मैं भी यही चाहती हूँ, आपकी वजह से मैं शांत हूँ और उस दिन के बाद से उनके सामने नहीं गई। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूल गई हूँ। पूरे 3 महीने से मेरा अंकुश जेल में है, लीला ने भारी आवाज में कहा। मुझे 2 दिन दो, मैंने सरजी से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि अगर अंकुश को बेल नहीं मिली तो खुद इस मामले को संभालेंगे। उन्होंने अंकुश के पुलिसमैन से भागने के पूरे इंतजाम कर दिए हैं। हमारी खुशकिस्मती यह है कि उस लड़की और बच्चे के चलते वेद ने मीडिया और भीड़भाड़ को पहले ही इस केस से दूर रखा है। अगर अंकुश भाग भी गया तो वो खुलकर किसी के सामने नहीं बता पाएंगे। तेजिंदर ने अपना पूरा प्लान लीला को बताया, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट उभर आई थी। अब लीला को पूरा यकीन था कि देर से ही सही पर उसका बेटा वापस घर आने वाला है और उसके बाद वो शिवांशा से खुलकर बदला ले पाएगी।